1970 का सितंबर ओक्लाहोमा, एक शेवरले इंपाला इंटरस्टेट 40 पर वेस्ट की तरफ बढ़ रही। गाड़ी चला रहा शख्स रेडियो के साथ साथ गाना गा रहा है, हिचिंग अ राइड। ये पूरी गर्मियों में सबसे ज्यादा चला, क्योंकि वो मैकडॉनल्ड्स के फील्ड रिप्रेजेंटेटिव है तो अक्सर क्वालिटी कंट्रोल के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाते ही रहते। इस बार भी वो एक मिशन पर है, लोकल फ्रेंचाइजी के मालिक को कंपनी का अगला नेशनल एड कैंपेन बेचने का मिशन। टैगलाइन है कम टू द मैकडॉनल्ड्स आइलैंड, और उन्हें नहीं पता कि ये कैसे चले। जूसी बर्गर्स और क्रिस्पी फ्राइज के साथ तो ये कैंपेन कुछ खास काम नहीं करेगा, बल्कि आइलैंड एड्स मैकडॉनल्ड्स को मजेदार जगह के तौर पर दिखाएंगे। इनमें फोकस किया जाएगा कि यहाँ आपको दोस्ताना माहौल मिलेगा और बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन ये कैंपेन तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब लोकल चेन इसमें हामी भर देगी। कंपनी कौन से एड्स दिखा सकती है, इसके लिए मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजीज के पास वीटो पावर है। अगर फ्रेंचाइजीज के मालिक ने एड के लिए मना कर दिया तो वो नहीं चलेगा। जैसे ही वो इंटरस्टेट पर स्लो होते हैं, मैकडॉनल्ड्स रिप्रेजेंटेटिव को A&W के एड का बिलबोर्ड दिखता है, जो अपनी रूट बियर के लिए फेमस एक फास्ट फूड राइवल है। वो ब्रेक लगाते, स्लोगन लिखा था A&W, यू आइलैंड ऑफ प्लेजर। वहां से निकलने से पहले उन्होंने बिलबोर्ड को अजीब ढंग से देखा। उन्हें जल्द ही एक पेफोन ढूंढना होगा ताकि तुरंत शिकागो के मैकडॉनल्ड्स हेड ऑफिस को अलर्ट कर सके। 2 घंटे बाद मैकडॉनल्ड्स के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बैरी क्लाइन ने कीथ राइनहार्ट को कॉल किया था। राइनहार्ट मैकडॉनल्ड्स एड एजेंसी के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं।
कीथ, एक दिक्कत हो गई है। A&W के एड कैंपेन में बिल्कुल वैसा ही स्लोगन है जैसा तुमने बनाया है। आइलैंड कैंपेन पे तो पानी फिर गया। हमारा वकील कह रहा था कि ये बहुत रिस्की है, शूट कैंसिल कर दो और नया आइडिया लेकर आओ।
ठीक है, हम लॉन्च डेट को कितना आगे बढ़ा रहे हैं?
हम नहीं बढ़ा रहे हैं, एयर टाइम पहले ही खरीद लिया गया है। तुम्हारे पास नया एड कैंपेन लिखने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते हैं।
राइनहार्ट का दिल मानो भारी सा हो गया था। उनकी एजेंसी ने कुछ ही महीनों पहले करोड़ों डॉलर का मैकडॉनल्ड्स एड अकाउंट हासिल किया था। उन्हें पता था कि मैकडॉनल्ड्स का पहला कैंपेन बहुत ही शानदार होना चाहिए। मुसीबत यह है कि राइनहार्ट के पास कोई भी बैकअप नहीं है, कोई कच्चा पक्का आइडिया तक नहीं है, और उन्हें कुछ नया सोचना होगा और जल्दी, नहीं तो मैकडॉनल्ड्स का एड अकाउंट तो गया उनके हाथ से। वंडरी से मैं हूं संदीप आर्या और ये है बिजनेस वॉर्स। पिछले एपिसोड में मैकडॉनल्ड्स ने स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन किया था। वहीं अमेरिका की 2 सबसे बड़ी फूड कॉन्ग्लोमरेट्स ने बर्गर किंग और बर्गर शेफ को खरीद लिया था। अब मैकडॉनल्ड्स के विरोधी और ताकतवर हो गए। ऐसे में अब वो कंपनी नंबर 1 की पोजीशन को और मजबूत करने को तैयार है अपने एड कैंपेन से, जो उसके ब्रांड को बर्गर से पहले रखेगा। मैकडॉनल्ड्स बनाम बर्गर किंग की हमारी सीरीज का ये 4th एपिसोड है, हैव इट योर वे। शिकागो में मैकडॉनल्ड्स का हेड ऑफिस, अक्टूबर 1970। 2 हफ्ते गुजर गए जब मैकडॉनल्ड्स ने एडमैन कीथ राइनहार्ट से कहा कि कम टू द मैकडॉनल्ड्स आइलैंड कैंपेन की जगह कुछ और लेकर आओ। अब दाढ़ी बढ़ाए करीब 30 साल का शख्स मैकडॉनल्ड्स के बॉसेस और कंपनी के दिग्गज फाउंडर रे क्रॉक के सामने आइडिया पेश करने को तैयार है। राइनहार्ट अपनी नर्वसनेस स्माइल से छिपा रहे। खुले गले की एवोकाडो ग्रीन पोलो टी शर्ट में वो मैकडॉनल्ड्स की टीम के सामने, उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी बात रखने लगे।
आज की लाइफ बहुत बिजी है। मैकडॉनल्ड्स के कस्टमर्स के पास करियर है, घर का काम है, होमवर्क है, जाने के लिए जगह है, भरने के लिए बिल्स है। उन्हें एक ब्रेक की जरूरत है, हमें उन्हें वो ब्रेक लेने की परमिशन देनी होगी आज ही मैकडॉनल्ड्स में।
मार्केटिंग टीम बिल्कुल चुप थी। क्या उन्हें पसंद आया, क्या वो बोर हो रहे हैं, राइनहार्ट बता ही नहीं सकते थे। वो आगे बढ़े।
हमने एक सॉन्ग बनाया जिसमें ये बात कही है, वो कुछ ऐसा है।
वो एक छोटा सा गाना गाते हैं जिसमें मैकडॉनल्ड्स की साफ सफाई की तारीफ है और कस्टमर्स से ब्रेक लेने को कहा जाता है। एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भौहें चढ़ाता है
और हाथ बांध लेता है।
मेरे हिसाब से थोड़ा सा अजीब है।
इससे पहले राइनहार्ट कुछ बोलते क्रॉक बोल पड़े,
अजीब होने में बुराई नहीं है, मुझे सॉन्ग पसंद आया, मजेदार है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, हम बर्गर के बिजनेस में नहीं है, शो बिजनेस में है।
क्रॉक का साथ मिलने से कैंपेन अप्रूव हो गया। '71 की शुरुआत में यू डिजर्व अ ब्रेक कैंपेन का टीवी डेब्यू हुआ। इसमें मैकडॉनल्ड स्टाफ के लोग दिख रहे हैं जो यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, हाथों में पोछा और सफाई का कपड़ा लिए हुए क्रू रेस्टोरेंट को चकाचक करते हुए अपने पोछों को हवा में घुमा कर नचा रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स का नया जिंगल गा रहे हैं, मानो वो रॉजर्स और हैमरस्टाइन के म्यूजिकल शो में एक्टिंग कर रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री में ऐसा एड किसी ने नहीं चलाया। अब तक फास्ट फूड के एड सिर्फ बर्गर के क्लोजअप शॉट्स तक ही सीमित थे, या रोनाल्ड मैकडॉनल्ड का बच्चों से और फ्राइज खाने के लिए कहकर काम चल गया था। यू डिजर्व अ ब्रेक ने पूरा खेल पलट दिया है। ये आइकॉनिक है, सेल्स बढ़ाने वाला एड है, जो मैकडॉनल्ड्स को एक ऐसी जगह के तौर पर दिखाता है जो लोगों को उससे जोड़ती है और उनके दिल की बात को कहती है, ना कि सिर्फ मेन्यू पर प्रोडक्ट दिखाकर काम चलाती है। ये एक ऐसा एड है जिसे मैकडॉनल्ड्स के विरोधी भी जल्द ही कॉपी करेंगे। सिर्फ एड ही ऐसी जगह नहीं है जहां मैकडॉनल्ड्स अपना परचम लहरा रहा है। अब तक बर्गर की जंग नॉर्थ अमेरिका के इर्द गिर्द ही चल रही थी, लेकिन अब मैकडॉनल्ड्स दुनिया भर में पहुंचने वाला है। 1971 के आते ही मैकडॉनल्ड्स की पहली कोशिश सफल हुई जापान में। 18 जुलाई 1971, दिन रविवार, डेन फुजीटा मैकडॉनल्ड्स के एग्जीक्यूटिव को टोक्यो का कमर्शियल इलाका दिखा रहे हैं। फुजीटा ही मैकडॉनल्ड्स को जापान लेकर आ रहे हैं। हैमबर्गर वहां के लिए एकदम नए होंगे, लेकिन फुजीटा का मानना है कि वो आइलैंड नेशन का नजरिया बदल देंगे। इंटरेस्ट जगाने के लिए उन्होंने अजीबो गरीब दावों से लोकल मीडिया आउटलेट्स को हैरान कर रखा है। जैसे इसे सुनिए, वो कहते हैं कि अगर जापानी हजारों साल से चावल और मछली की जगह मैकडॉनल्ड्स खाते तो वो भी लंबे सफेद और भूरे बालों वाले होते। लेकिन अब बेतु के बयानों से काम नहीं चलने वाला। जापान का पहला मैकडॉनल्ड्स 2 दिन में खुलने वाला है। फुजीटा एग्जीक्यूटिव को जगह दिखाने ले जा रहे हैं। फुजीटा एक स्टोर के सामने रुकते हैं जहां एक बोर्ड लगा है, यही खुलेगा जापान का मैकडॉनल्ड्स। ऐसे मैकडॉनल्ड्स कहते हैं, जापानियों को इसे कहने में दिक्कत होगी, तो यहां हम इसे मैकडॉनल्ड्स कहेंगे। फुजीटा बोर्ड के एक छोटे से छेद की तरफ इशारा करते हैं जिससे स्टोर ढका हुआ है। एग्जीक्यूटिव अंदर झांकते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अंदर कुछ मजदूर पर्स के एक स्टोर को हटाने में लगे जिसकी जगह मैकडॉनल्ड्स खुलने वाला है।
ये क्या मजाक है?
नहीं, ये मजाक क्यों होगा,
यहाँ तो कुछ भी नहीं है। रेस्टोरेंट परसों खुलने वाला है, ब्रेक रॉक ओपनिंग के लिए आ रहे हैं, और तुमने अब तक रेस्टोरेंट बनाना शुरू भी नहीं किया है।
ये तैयार हो जाएगा।
2 दिन बाद एग्जीक्यूटिव और क्रॉक स्टोर पहुंच चुके थे। उन्हें लगा था कि अभी तक कुछ भी तैयार नहीं हुआ होगा, लेकिन वहां तो मैकडॉनल्ड्स अच्छा खासा चल रहा है। फुजीटा उन दोनों को हैरान देखकर स्माइल करते हैं।
मैंने कहा था ना, फिक्र मत करो। अब मुझे बताओ, तुम लोगों को अमेरिका में इसे बनाने में 3 महीने कैसे लग जाते हैं?
आनंद फानन में हुई ओपनिंग के बावजूद मैकडॉनल्ड्स ने जापान में शानदार कदम रखा। कुछ ही महीनों में जापान मैकडॉनल्ड्स की सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाली चेन में शामिल हो गया। जापान की सक्सेस ने मैकडॉनल्ड्स की यूएस टीम की आंखें खोल दी। अब तक कंपनी को लगता था कि नॉर्थ अमेरिका से बाहर जाने के लिए उसे मेन्यू चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जापान ने साबित कर दिया कि बिग मैक की मांग पूरी दुनिया में है। लेकिन बर्गर किंग के सीईओ जिम मैकलेमोर के लिए मैकडॉनल्ड्स का जापान तक पहुंचना एक कड़वा घूंट था। उन्होंने 2 साल पहले यही करने का सोचा था, लेकिन पिल्सबरी में बर्गर किंग के मालिकों ने उनके आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया था। मैकलेमोर की पिल्सबरी से सिर्फ यही एक शिकायत नहीं थी, उन्हें उम्मीद थी कि नए मालिक बर्गर किंग को और तेजी से बढ़ाने का सोचेंगे, लेकिन वो तो धीरे धीरे बिना कोई रिस्क लिए आगे बढ़ना चाहते। मैकलेमोर के हिसाब से यह खराब पॉलिसी थी। मैकडॉनल्ड्स अरबों डॉलर का लोन ले रहा था ताकि और रेस्टोरेंट खोल सके। विरोधियों के बीच की दूरी कम होने के बजाय बढ़ रही है। जनवरी 1972 तक ये सब मैकलेमोर की बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वो मान चुके थे कि बर्गर किंग बर्गर की जंग हार चुका है। उन्होंने बर्गर किंग छोड़ दिया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद मैक्लेमोर जिस टीम को छोड़ गए थे उसे एक ऐसा आइडिया आया जिसने बर्गर किंग को गेम में वापस ला दिया। अक्टूबर 1972, व्हाइट सल्फर स्प्रिंग्स, वेस्ट वर्जीनिया। शानदार ग्रीन बाय रिजॉर्ट में फ्रेंचाइजी मालिक, फील्ड रिप्रेजेंटेटिव और बर्गर किंग को खड़ा करने वाले कुछ एग्जीक्यूटिव हर साल होने वाली अपनी मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये सब खुश नहीं है। फ्रेंचाइजी फ्लैट सेल से परेशान है और इस बात से भी कि कंपनी हर चीज को छोड़कर बस वॉपर के साइज को ही प्रमोट करती जा रही है। फ्रेंचाइजी के मालिक मैनेजमेंट को अपने दिल की बात बताते हैं।
हम हमेशा बस यही कहते रहते हैं, वॉपर बड़ा है, लोगों को पता तक नहीं है कि हम बच्चों के छोटे बर्गर भी बेचते हैं। मैं बस उन्हीं कस्टमर्स को हर रोज देखता रहता हूँ, हमारे पास नए कस्टमर्स आते ही नहीं है।
फ्रेंचाइजी के कड़वे शब्द सुनने वाले एग्जीक्यूटिव्स में से एक हैं क्रिस शॉनलेब। वो बर्गर किंग की मार्केटिंग के नए वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्हें लगा कि एक ब्रेक लेना चाहिए और वो मीटिंग रूम से बाहर चले आए। वो हॉलवे में खड़े होकर रुमाल से अपना पतले फ्रेम वाला बड़ा चश्मा साफ कर रहे थे, तभी एक बुजुर्ग कपल वहां से गुजरता है। पत्नी ने मीटिंग रूम के बाहर बर्गर किंग का साइन देखा और पति की तरफ मुड़ गई।
बिल, ये देखो बर्गर किंग। बर्गर किंग क्या है?
हाँ, ये मैकडॉनल्ड्स जैसा है।
ये बात शॉनलेब को चुभ गई। उन्हें महसूस हुआ कि लोग बर्गर किंग को एक बर्गर चेन की कॉपी की नजर से देखते हैं। मैकडॉनल्ड्स के क्वार्टर पाउंडर और बर्गर शेफ के सुपर शेफ की बदौलत वॉपर अब अलग नहीं रहा है। शॉनलेब को समझ आ गया था कि फ्रेंचाइजी ठीक कह रही है, बर्गर किंग को एक नए मैसेज की जरूरत है। मायामी में बर्गर किंग के हेडक्वार्टर्स में शॉनलेब ध्यान से देखते हैं कि बर्गर किंग में अलग क्या है। उनके दिमाग में एक बात आती है, बर्गर किंग पर ऑर्डर किए जाने वाले करीब आधे हैमबर्गर लोगों की पसंद से बनते हैं और ऐसा मैकडॉनल्ड्स में नहीं होता है। मैकडॉनल्ड्स पसंद के हिसाब से बर्गर नहीं बनाता। सर्विस जल्दी देने के लिए वो अपने बर्गर्स को कस्टमर्स के ऑर्डर से पहले ही बनाकर रख लेता है। लेकिन बर्गर किंग ऑर्डर लेने के बाद बर्गर बनाता है। इसका मतलब है कि कस्टमर्स जैसा चाहें वैसा अपनी पसंद से बर्गर बनवा सकते हैं। ये फर्क समझाने के लिए शॉनलेब और बर्गर किंग की एड एजेंसी एक नया कैंपेन लाती है, हैबिट योर वे। और ये पक्का करने के लिए कि कैंपेन एक छाप छोड़े, शॉनलेब ने 1973 की गर्मियों में बर्गर किंग के सारे एड कैंसिल कर दिए। वो अपनी सेविंग से इस जंग की तैयारी करते हैं, एक ऐसी तैयारी जिससे बर्गर किंग मैकडॉनल्ड्स को पछाड़ दे और नया कैंपेन लॉन्च होने पर असरदार तरीके से एयरवेव हासिल कर सके। आखिरकार 1973 में सितंबर महीने के बीच मंगलवार को हैव इट योर वे कैंपेन पहली बार चलता है। शुक्रवार को क्रिस शॉनलेब बर्गर किंग के मायामी हेडक्वार्टर में है और काफी खुश है। सेल्स में 50% का इजाफा हुआ है। कस्टमर्स हैव इट योर वे गाना गाते हुए बर्गर किंग में कदम रख रहे हैं। ये कैंपेन हुक्म का इक्का साबित हुआ। लेकिन फिर उन्हें बर्गर किंग के नए सीईओ आर्ट रोजवेल का एक इंटरनल कॉल आया।
क्रिस, मुझे जल्द से जल्द मिलो।
शॉनलेब रोजवेल के ऑफिस में घुसते ही समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। रोजवेल का चेहरा उतरा हुआ था और बर्गर किंग के लीगल चीफ रे डेटरिच भी वहां पहुंचे हुए थे। रोजवेल शॉनलेब को बैठने का इशारा करते हैं।
मेरी अभी अभी बर्गर शेफ के सीईओ जॉर्ज पेरी से फोन पर बात हुई है। उन्होंने बताया कि उनके पास हैव इट योर वे का ट्रेडमार्क है। क्या तुम बताओगे कि हम वो ऐड क्यों चला रहे जिसमें विरोधियों का ट्रेडमार्क है? मैंने जुलाई में ही ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट की थी, लीगल टीम ने अप्रूव भी किया था।
डेटरिच शॉनलेब की तरफ देखते हैं।
मुझे वैसी कोई रिक्वेस्ट याद नहीं, कसम से मुझे अप्रूवल मिला था, मेरे पास फाइल भी है, कहो तो लाकर देता हूं। अपने सेक्रेटरी से लाने को कहो।
कमरे में सन्नाटा पसरा है, टेंशन बढ़ती जा रही है। 5 मिनट बाद शॉनलेब की सेक्रेटरी एक मेमो लाती है जिसमें बर्गर किंग की लीगल टीम की तरफ से हैव इट योर वे कैंपेन को अप्रूवल मिला हुआ है। इसे पढ़ने के बाद रॉजवेल डेटरिच को देखते हैं।
अब बताओ, हमसे कोई चूक हुई है, पर अब हम इसे बदल नहीं सकते। हम देखते हैं कि क्या बर्गर शेफ सही कह रहा है और सोचेंगे कि हमारे लिए ये कितनी बड़ी दिक्कत है। ठीक है, मैंने बर्गर शेफ को तो अभी समझा बुझा दिया है, तो अगले हफ्ते सोमवार को सबसे पहले मुझसे मिलना।
शॉनलब एकदम शॉक में कमरे से निकलते हैं। उन्हें लगा था कि हैव इट योर वे एड बर्गर किंग के लिए हुक्म का इक्का साबित होगा। अब बर्गर किंग को नहीं पता था कि यह सफल होगा या उसे कोर्ट तक ले जाएगा। बर्गर किंग के मायामी हेडक्वार्टर में आज सोमवार की सुबह है। लीगल चीफ रे डेटरिच अपना सारा वीकेंड बर्गर शेफ के हैव इट योर वे ट्रेडमार्क के बारे में जानने में निकाल देते हैं। सीईओ आर्ट रॉजवेल और मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट क्रिस शॉनलब इंतजार कर रहे हैं डेटरिच के हल निकालने का।
ट्रेडमार्क बर्गर शेफ के पास ही है, हम उनके ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर रहे हैं।
रॉजवेल चौंक जाते हैं।
अरे यार क्रिस, क्या हम एड रोक सकते हैं?
शॉनलब इशारे से मना कर देते हैं।
हमें टीवी स्टेशन को 2 हफ्ते पहले बताना होता है।
डेटरिच का मुंह बन जाता है।
उस मामले में बर्गर शेफ आदेश जारी कर सकता है और नुकसान की भरपाई के लिए करोड़ों रुपए मांग सकता है।
रॉजवेल सिर पर हाथ रख लेते हैं। उन्हें एक बड़ा फैसला लेना है, सेल्स बढ़ाने वाले एड को जाने दो या मुकदमा झेलो। वो ऊपर देखते हैं।
एड चलने दो, जो होगा देखा जाएगा। जब तक होगा मैं बर्गर शेफ को लटकाता रहूंगा।
अक्टूबर 1972 की शुरुआत है। न्यूयॉर्क के टेरी टाउन में बर्गर शेफ हेडक्वार्टर्स। बर्गर शेफ के बॉस जॉर्ज पेरी रॉजवेल का फोन पटक देते हैं। रॉजवेल बस उन्हें हैबिट योर वे कैंपेन की बातों में लगाकर घुमा रहे। बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी बातें कि उन्हें और टाइम चाहिए। पेरी को ये सब नहीं चाहिए। बर्गर शेफ मुसीबत में है। पिछले 10 सालों से बर्गर शेफ मैकडॉनल्ड्स से ज्यादा रेस्टोरेंट खोलने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन जल्दबाजी में इसने कई ऐसे रेस्टोरेंट भी खोल दिए हैं जो घाटे में हैं। शुरू में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भले ही फ्रेंचाइजी घाटे में हो, बर्गर शेफ इक्विपमेंट और सप्लाईज के जरिए फायदा कमा ही ले रहा था। लेकिन अब बर्गर शेफ के घाटे में चल रहे रेस्टोरेंट से कंपनी के करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। इसी वजह से बर्गर शेफ का मालिक जनरल फूड्स चाहता है कि पेरी घाटे में चल रहे सैकड़ों रेस्टोरेंट बंद कर दे। अब बर्गर किंग बर्गर शेफ का स्लोगन उसी के खिलाफ यूज कर रहा है। आग बबूला हो रहे पेरी बर्गर शेफ के वकील को फोन करते हैं।
इंजंक्शन दायर करो और बर्गर किंग को कोर्ट में घसीटो।
दिसंबर 1972 और न्यूयॉर्क के कोर्ट रूम में बर्गर शेफ जज से गुहार लगा रहा है कि बर्गर किंग को हैव इट योर वे कैंपेन चलाने से रोका जाए। बर्गर किंग चिंता में। हैव इट योर वे से कंपनी की बंद पड़ चुकी सेल्स तेजी से बढ़ने लगी है। उसका जीतना बहुत जरूरी है। बर्गर किंग के अटॉर्नी खड़े होकर कोर्ट में अपनी बात रखते हैं।
बर्गर किंग की रिसर्च बताती है करीब आधे अमेरिकन हैव इट योर वे को बर्गर किंग से रिलेट करते हैं। बर्गर शेफ ने यह स्लोगन सिर्फ ओहायो में यूज किया, इसीलिए इस इंजंक्शन से बर्गर किंग को बहुत नुकसान होगा। अगर कोर्ट को बाद में लगता है कि बर्गर किंग ने बर्गर शेफ के ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया तो नुकसान में दिखाया जा सकता है।
बर्गर शेफ को जिसका डर था वही हुआ। जज बर्गर किंग की बात से सहमत है। उन्होंने बर्गर शेफ की इंजंक्शन की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि बर्गर किंग स्लोगन इस्तेमाल कर सकता है जब तक कि ट्रेडमार्क की बहस को पूरा नहीं सुना जाता। इस कानूनी झटके से डगमगा चुका बर्गर शेफ एक शर्त पर टैगलाइन से दावा हटा लेने का ऑफर देता है, अगर बर्गर किंग उसे $1,00,000 दे दे तो। बर्गर किंग ने बिना देर किए उतने का चेक थमा दिया। ये बर्गर शेफ की बहुत बड़ी गलती है। हैव इट योर वे कैंपेन से बर्गर किंग की सेल्स बहुत तेजी से बढ़ी। खुश होकर पिल्सबरी ने और बर्गर किंग खोलने पर लगी रोक को हटा दिया। इस दौरान बर्गर शेफ के रेस्टोरेंट कम होते गए, क्योंकि उन्होंने घाटे वाले रेस्टोरेंट बंद कर दिए। दिसंबर 1974 में बर्गर किंग बर्गर शेफ को पछाड़ते हुए दूसरी सबसे बड़ी बर्गर चेन बन गया। बर्गर किंग अब करीबन 1100 जगह रेस्टोरेंट खोल चुका है और बर्गर शेफ्स बस 950 जगहों पर है। बर्गर शेफ के लिए अंत करीब है। 1982 तक बर्गर शेफ के 700 से भी कम रेस्टोरेंट बचे हैं और जनरल फूड्स भी उससे अलग होना चाहता है। जनरल फूड्स ने बर्गर शेफ को फास्ट फूड चेन हार्डीज को बेच दिया। एक साल में ही बर्गर शेफ के बचे खुचे रेस्टोरेंट्स हार्डीज रेस्टोरेंट बन गए। लेकिन जब बर्गर किंग बर्गर शेफ से आगे निकल रहा है, मैकडॉनल्ड्स उनसे कहीं आगे जा चुका है। 1974 तक मैकडॉनल्ड्स के नॉर्थ अमेरिका में 3000 से ज्यादा रेस्टोरेंट है और मैकडॉनल्ड्स अभी बर्गर किंग से और ज्यादा आगे निकलने वाला है। इसके पास एक प्लान है जिस पर वो सालों से काम कर रहा है। 1972 का दिसंबर और रे क्रॉक ने अपने सेंटा बारबरा रैंच होम में फोन उठाया। फोन मैकडॉनल्ड्स की लोकल फ्रेंचाइजी से हर्ब पीटरसन ने किया।
मुझे आपको कुछ दिखाना है, क्या आप रेस्टोरेंट आ सकते हैं?
क्रॉक के आते ही पीटरसन खुश होकर उन्हें किचन की तरफ ले जाते हैं और कुछ पकाना शुरू करते हैं। पीटरसन अंडे को फोड़कर ग्रेडल पर डालते हैं। जैसे ही अंडा पकता है, वो कनेडियन बेकन का एक टुकड़ा फ्राई करते हैं और अंग्रेजी मफिन को आधा कर उन पर मक्खन डालते हैं। वो मफिन पर अंडे, बेकन और चीज स्लाइस की परत रखते हैं। बाकी का हिस्सा ऊपर रखकर एक सैंडविच जैसा बनाकर क्रॉक को देते हैं। वो एक बाइट लेते हैं और चमकती सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती है।
हब, ये तो लाजवाब है, कमाल कर दिया। मैं इसे तुरंत ही अपने सारे रेस्टोरेंट में बेचना चाहता हूं।
लेकिन एग मफिन को मैकडॉनल्ड्स के हजारों रेस्टोरेंट में लाते लाते सालों लग गए। सप्लाई चेन बनाने की जरूरत थी और हर किचन में नए इक्विपमेंट लगाने पड़े। पूरा ब्रेकफास्ट मेन्यू बनाने के लिए ब्रेकफास्ट ऑप्शन के और भी ऑप्शन खड़े करने पड़े। मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी को सुबह जल्दी खोलने और ज्यादा स्टाफ को हायर करने के लिए मनाने की जरूरत थी। स्टाफ जिसे एग मफिन बनाना सीखना पड़ेगा। मैकडॉनल्ड्स को ब्रेकफास्ट ऑफर लाते लाते 1976 हो गया। लेकिन सब्र का फल मीठा साबित हुआ। ब्रेकफास्ट ने मैकडॉनल्ड्स की कमाई को 15% बढ़ा दिया। जब तक बर्गर किंग अपनी पकड़ बना रहा है, मैकडॉनल्ड्स अपने ही बनाए हुए ब्रेकफास्ट मार्केट पर राज कर रहा है। मैकडॉनल्ड्स के पूरे दिन का मेन्यू बता रहा है कि बर्गर किंग को पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा अगर वो फास्ट फूड के बादशाह को चुनौती देना चाहता है तो। मैकडॉनल्ड्स अब बर्गर किंग से 4 गुना बड़ा हो चुका है और अब वो डेविड और गोलायत के बीच की लड़ाई है। लेकिन बर्गर किंग हार नहीं मान रहा है। बर्गर किंग अपने इस विशालकाय विरोधी पर घात लगाकर हमला करने की सोच रहा है। अगले एपिसोड में मैकडॉनल्ड्स रेड आर्मी में शामिल होता है बर्गर किंग। मिस्टर रॉजर्स की बेइज्जती करता है और 2 चोटियों वाली एक लड़की जानना चाहती है कि बीफ कहां है। वंडरी से ये है बिजनेस वॉर्स। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और आपके द्वारा सुनी जा रही बातचीत के बारे में एक जरूरी नोट। हम ठीक से नहीं कह सकते कि क्या कहा गया था, लेकिन ये बातचीत हमारी बेस्ट रिसर्च पर आधारित है। बिजनेस वॉर्स की ये सीरीज मूल रूप से डेविड ब्राउन ने होस्ट की थी। इस वर्जन का होस्ट मैं हूँ संदीप आर्या। ट्रिस्टन डोनोवन ने ये कहानी लिखी है। कैरन लोव हमारी सीनियर प्रोड्यूसर है। इसे एडिट किया है एमिली फ्रॉस्ट ने। हमारी एडिटर और प्रोड्यूसर हैं जेनी लोअर। ओरिजिनल साउंड डिजाइन किया है बे एरिया साउंड ने। एमिली खेनकल हमारी कोऑर्डिनेटिंग प्रोड्यूसर हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं मार्शल लुई। वंडरी से अनान लोपेज द्वारा निर्मित।